लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक का।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। जो अपने पड़ोसी की चापलूसी करता, वह अपने पैरों के लिए जाल बिछाता है। दुष्ट अपने ही पाप के जाल में फंसता, किंतु धर्मी उल्लसित होकर आनंद मनाता है। धर्मी दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट को उनकी कोई जानकारी नहीं होती। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय के 5 से लेकर 7 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय के इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। 27 पदों वाले 29वें अध्याय में सूक्ति ग्रंथ का लेखक धार्मिकता, न्याय, अनुशासन और विनम्रता संबंधी सदियों पुरानी बुद्धि को खूबसूरती से व्यक्त करता है। यह पाठकों को स्वतः के दृष्टिकोण और कार्यों पर विचार करने की चुनौती देता है। यह अध्याय हमें मूर्खता के बजाय बुद्धिमता, दुष्टता के बजाय न्याय, अभिमान के बजाय विनम्रता और लक्ष्यहीनता के बजाय दूरदर्शिता चुनने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है और इस प्रकार सार्वभौमिक सत्यों के साथ यह नीतिपरक और नैतिक जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस अध्याय में लेखक पड़ोसी की चापलूसी को गलत निरूपित करता है, क्योंकि पड़ोसी की चापलूसी करने वाला पड़ोसी का भला नहीं चाहता, बल्कि वह उसके लिए जाल बिछाता है। चापलूसी के पीछे उसका इरादा बुरा होता है। वह अपने पड़ोसी की चापलूसी इसलिए करता है ताकि उससे फायदा उठा सके। अस्तु, बुद्धिमानी इसी में है कि जो लोग हमारी चापलूसी करते हैं उनसे हम सावधान रहें। 29वें अध्याय के 6 पद में इसके बाद पापपूर्ण मार्ग के खतरे और पवित्रता के मार्ग की सुखदता के बीच अंतर दर्शाया गया है। पापपूर्ण मार्ग का अंत केवल दंड हो सकता है। पाप एक फंदा है जिसके जाल में मनुष्य फंसता ही चला जाता है और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए पाप से दूर रहने और पवित्रता का मार्ग अपनाने का सूक्ति ग्रंथ में संदेश दिया गया है। पाप, बुराई, अपराध ऐसे फंदे हैं जो आनंद को नष्ट कर डालते हैं, जबकि धर्मी जो पाप और बुराई का परित्याग करता वह स्वतंत्रता और सुरक्षा में चलता है। वस्तुतः 7वें पद में लेखक उसी धर्मी की प्रशंसा करता है जो दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो गरीबों के मामलों पर विचार करता है। वह बेईमान वकील, न्यायाधीश या अधिवक्ता की तरह दुष्ट का पक्ष लेकर न्याय की तौहीन नहीं करता, बल्कि गरीबों की चिंता करता है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ता है। वह स्तोत्र ग्रंथ के 41वें भजन के अनुसार धन्य है। भजनकार कहता है, धन्य है वह जो दरिद्र की सुध लेता, प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है।
वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए, पाप के पुंज सारे, वही धन्य जिसके।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय के अग्रिम पदों पर, यानी कि 8 से लेकर 11 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इनमें लेखक कहता है, उपहास करने वाले नगर में उत्तेजना पैदा करते हैं, किंतु ज्ञानी क्रोध को शांत करते हैं। यदि ज्ञानी मूर्ख पर मुकदमा चलाता तो वह क्रुद्ध हो या प्रसन्न, उसे शांति नहीं मिलेगी। हत्यारे निष्कपट व्यक्ति से वैर करते हैं, किंतु धर्मी उसके जीवन की रक्षा करते हैं। मूर्ख चिंता कर अपना क्रोध अभिव्यक्त करता है, किंतु बुद्धिमान उसे वश में रख कर शांत करता है। श्रोताओं, वे लोग कौन हैं जो जनता के लिए खतरनाक हैं? वे उपहास करने वाले हैं, तिरस्कार करने वाले हैं। जब ऐसे लोगों को देश के प्रशासन में लगाया जाता है तो वे जल्दबाजी में काम करते हैं, क्योंकि वे विचार विमर्श करने से कतराते हैं। वे अवैध और अनुचित काम करते हैं, क्योंकि वे कानून और संविधान द्वारा बाधित होने से कतराते हैं। वे अपने विश्वास को तोड़ते हैं, क्योंकि वे अपने वचन के प्रति कदापि प्रतिबद्ध नहीं रहते। वे लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि वे उन्हें खुश करने से कतराते हैं। वे अपने बुरे आचरण से शहर में आग लगा देते, नागरिकों के बीच कलह फैलाते और उन्हें भ्रमित कर डालते हैं। वे तिरस्कार करने वाले लोग हैं जो धर्म विवेक के दायित्वों, दूसरी दुनिया के डर और हर उस चीज का मजाक उड़ाते हैं जो पवित्र है, जो गंभीर है। ऐसे लोग अपनी पीढ़ी के लिए विपत्ति उत्पन्न करते हैं, जबकि ज्ञानी क्रोध को शांत करता है। वे लोग ही बुद्धिमान हैं जो सच्चे ज्ञान को बढ़ावा देते, जो विवेकपूर्ण सलाह से संघर्षरत दलों में सामंजस्य स्थापित करते हैं और विभाजन के बुरे परिणामों को रोक लेते हैं। फिर नवे पद में लेखक कहता है कि यदि ज्ञानी मूर्ख पर मुकदमा चलाता तो वह क्रुद्ध हो या प्रसन्न, उसे शांति नहीं मिलेगी। श्रोताओ, यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति को सलाह दी गई है कि वह अपनी बुद्धि को मूर्ख के समान न लगाए, उसके साथ विवाद न करे और न ही उस पर तर्क थोपने या उससे अधिकार प्राप्त करने के बारे में सोचे। यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ विवाद करता है तो वह आशा कर सकता है कि उसकी बात समझी जाएगी, क्योंकि उसके पास तर्क और न्याय दोनों है। वह अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है, कम से कम विवाद को समाप्त कर सकता है और इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा भी सकता है। लेकिन यदि वह किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाद करता है तो उसे कोई शांति नहीं मिलेगी, वह इसका कोई अंत नहीं देखेगा, न ही उसे इसमें कोई संतुष्टि मिलेगी, बल्कि वह निरंतर बेचैन रहेगा। श्रोताओं, मूर्ख व्यक्ति चाहे क्रोध से लड़े या हंसी से या फिर तिरस्कार से, चाहे वह किसी से कही गई बात को गाली देकर कहे या मजाक समझे, चाहे वह उस पर कटाक्ष करे या उसका मजाक उड़ाए, उसे गलत तरीके से लिया जाएगा। इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं से चाहे कठोर हो या मधुर व्यवहार करे, चाहे वह छड़ी लेकर आए या नम्रता की भावना के साथ, यह सब वैसा ही है जैसा कोई कहे हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने नृत्य नहीं किया, तुम्हारे लिए विलाप किया और तुमने विलाप नहीं किया। कुरिन्थियों को प्रेषित पत्र के चौथे अध्याय के 21वें पद में संत पॉल प्रश्न करते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं लाठी लिए आपके पास आऊं या प्रेम और कोमलता का भाव लेकर? इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, मूर्ख चिंता कर अपना क्रोध अभिव्यक्त करता, किंतु बुद्धिमान उसे वश में रखकर शांत करता है। श्रोताओ, प्रज्ञावान अथवा बुद्धिमान व्यक्ति भले हैं, वे सबका भला चाहते हैं, मूर्ख का भी, इसीलिए शांत रहकर उसे सीधे रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं।
वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के पुंज सारे, वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के पुंज सारे, नहीं नाथ ने दोष जिसको लगाया, सुखी वो कि जिसको ना छल छंद भाया, वही अन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के कुंज सारे से पाप स्वीकार मैंने ये नाथ से पाप स्वीकार मैंने छिपाए नहीं दोष जिस बार मैंने कहा जग प्रभु पाप स्वीकार सारे तभी आपने दोष सारे निवारे वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के पुंज सारे
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कार्डिनल पेत्रो पारोलिन ने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके कार्यों को याद किया जो कलीसिया और दुनिया की नींव को मजबूती प्रदान करती है। 2 दशक पूर्व संत पापा संत योहान पॉलस द्वितीय के अंतिम क्षणों पर चिंतन करते हुए कार्डिनल पेत्रो पारोलिन ने उनके चिन्हों संत पेत्रुस के प्रांगण में परम धर्म पीठ प्रेरित कार्यालय की खिड़की से पास्कर रविवार को मौन आशीर्वाद प्रेषित करना और उनके अंतिम विदाई हेतु विश्वासों की असंख्य भीड़ की याद की। कार्डिनल पेत्रो पारोलिन ने संत योहान के सुसमाचार पर आधारित संत पापा योहान पॉलस के गहरे विश्वास पर चिंतन किया जो उनके पूरे जीवन में मार्गदर्शन का आधार रहा। जो कोई मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। कार्डिनल ने कहा कि इस दृढ़ विश्वास ने दिवंगत संत पापा को उनकी प्रेरणाई में अडिग बनाए रखा जिसके फलस्वरूप उन्होंने असाधारण साहस और निष्ठा के साथ चुनौतियों का सामना किया। संत पापा योहान पॉलस द्वितीय का ईश्वर की निगाहों में जीवन जीने पर प्रकाश डालते हुए कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने ईश्वर को प्रथम दृष्टा के रूप में वर्णन किया जिसके सामने सभी चीजें खुली हुई हैं। कार्डिनल ने कहा ईश्वर के सामने उनके जीवन का खुलापन सत्य के प्रति उनकी भयविहीन गवाही मानवीय गरिमा की रक्षा हेतु उनका समर्पण और सुसमाचार की घोषणा हेतु उनका अथक प्रयास उनके जीवन का आधार था। 1981 में हत्या के प्रयास उपरांत दिवंगत संत पापा के शब्दों को याद करते हुए कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि कैसे उन्होंने अपने जीवित बचे रहने को ईश्वर का एक उपहार घोषित करते हुए उसे कलीसिया की सेवा हेतु समर्पित किया। संत पापा योहान पॉलस द्वितीय में शांति और मानव सम्मान के लिए निरंतर अपने प्रयास जारी रखे उन अवसरों में भी जब उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। कार्डिनल पारोलिन ने कहा शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट रही जो कलीसिया के प्रेरिताई साक्ष्य को एक मूर्त रूप देती है। उन्होंने उनकी उस अपील को याद करते हुए कहा युद्ध मानवता के लिए सदैव हार है। वहीं संत पापा योहान पॉल द्वितीय के निधन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोलिश धर्माध्यक्ष धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष तदेव वोदसा ने दिवंगत संत पापा की 20वीं बरसे की याद में संध्या प्रार्थना की अगुवाई की। इस प्रार्थना सभा में रोम के निवासी और विदेशों में पोलिश समुदाय के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में संत पेत्रुस के प्रांगण में जमा होते हुए जागरण प्रार्थना में भाग लिया। प्रार्थना सभा के दौरान रोजरी माला की प्रार्थना में संत पापा योहान पॉलस की शिक्षाओं उनके कथनों और विचारों को शामिल करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाधर्माध्यक्ष तदेव बोधसा ने कहा, आज हम उस महान हस्ती और उसके धर्माध्यक्षीय काल हेतु ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जो कलीसियाई इतिहास में एक महानतम काल को व्यक्त करता है। 20 साल पहले की घटनाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा, हमें वह पल याद है जब लोग इस प्रांगण में घुटने टेक कर बैठे थे। कुछ रोए तो कुछ ने खुद से पूछा कि उन्हें क्यों जाना पड़ा। धर्माध्यक्ष ने कहा, हमारे महान संत पापा योहान पॉलस द्वितीय ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे बढ़कर उन्होंने हमें मसीह का मार्ग दिखलाया और दूसरों की सेवा करके हर दिन, यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी, उन्होंने हमें यीशु के साथ चलना सिखलाया। संत पापा फ्रांसिस ने अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण सेवा के प्रतिभागियों को जयंती वर्ष की तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में अपने संदेश प्रेषित किए। संत पापा ने अपने संदेश में कहा, जिस भांति धड़कता हृदय पूरे शरीर के लिए रक्त संचार करता है, उसी भांति आपकी चाह केवल कलीसिया के लिए नहीं बल्कि उसके सारे वैश्विक कार्यों के लिए भी खुली हो, जहां आप अपने को संत पापा के निवेदनों के संग विशेषकर शांति और मेल मिलाप को अपना बनाते हैं। पवित्र आत्मा, जो हमारे लिए पुनर्जीवित यीशु के उपहार हैं, हमें एकता, शांति और भ्रातृत्व में पिरो कर रखें। कलीसिया का उद्देश्य यही है कि हम एक नए और मेल मिलाप मानवता का निर्माण करें। संत पापा ने कहा, यह अनुभूति सिर्फ आपकी केवल ना हो बल्कि यह सबों की हो। आप इसे विश्व के संग आशा और शांति के स्रोत स्वरूप साझा करें। पवित्र आत्मा मानव हृदय में सच्ची शांति प्रदान करते हैं, जो हमें अपने परिवारों, समाज और देश के विखराव की स्थिति पर विजयी होने को मदद करता है। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण सेवा के प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे शांति और एकता के शिल्पकार बने। उधर म्यांमार के हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। यीशु समाजी प्रांतीय अधिकारी फादर गिरीश संतियागो ने क्षति का आंकलन करने और मानवीय सहायता हेतु मंडाले क्षेत्र का दौरा किया। म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप में गुरुवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 3085 हो गई है। वहीं 341 अब भी लापता हैं, जबकि 4700 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वयन कार्यालय ने बताया कि पीड़ितों में 50 बच्चे और 2 शिक्षक शामिल हैं, जो मंडाले के निकट प्री स्कूल के ढह जाने से मारे गए। एजेंसी ने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्रों की भयावह स्थिति पर प्रकाश डाला, जहां समुदाय शुद्ध पानी, स्वच्छता और आपातकालीन सहायता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर की सड़कों पर सड़ते शवों की बदबू फैलनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीद में मलबा हटाने के लिए बेहताशा काम कर रहे हैं। फादर गिरीश ने कहा कि तबाही के बावजूद लोगों का विश्वास अडिग है। हमने मंगलवार की सुबह धर्माध्यक्ष के निवास के सामने एक खुली जगह में मिस्सा बलिदान अर्पित किया, जहां भारी क्षति हुई है। मोटरसाइकिल से यात्रा करते हुए फादर संतियागो पूरे मंडाले में पीड़ितों से मिलते हुए उन्हें सहायता और सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगों ने सड़क किनारे आश्रय बना लिया है, जिनकी स्थिति दिल दहला देने वाली है। स्वयंसेवी दलों के द्वारा विस्थापितों के लिए भोजन, स्वच्छ पानी, दवा और आश्रय की तत्काल व्यवस्था करने की कोशिश जारी है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।